अल्लाह ताला जो है वो एहसान का रवैया अख्तियार करेगा, अल्लाह ताला अपना फजल और करम करेगा, ये बात तो समझ में आती है। अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह जुल्म नहीं कर सकता, ये समझ में नहीं आती बात। तो ये तो हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी नेकी की वजह से एक शख्स को जन्नत अता करे और हमेशा की जन्नत दे दे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स ने कुफ्र का रास्ता अख्तियार किया और कुफ्र के नतीजे में जो सज़ा मिले जहन्नुम की, वो हमेशा की हो? हमेशा की सज़ा एक तरह से मुनासिबत नहीं रखती। भाई जुर्म जितना भी होगा, कोई ना कोई उसकी मैग्नीट्यूड होगा उस जुर्म का, उसके लिहाज से वो जहन्नुम कहीं ना कहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। जहन्नुम हमेशा के लिए क्यों होगी?
ये बात यह है कि एक है किसी जुर्म की सज़ा बयान करना, तो अल्लाह ताला ने यह बताया है कि वो लोग जो मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार करते हैं, हकीकत उन पर वाज़े हो जाती है, इसके बावजूद मेरा इनकार कर देते हैं, मेरे पैगंबर आते हैं तो उनके मुकाबले में भी ज़िद्दम ज़िद्दा का रवैया इख्तियार कर लेते हैं, हकायक वाज़े होने के बावजूद उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, इस्तिकबार का रवैया इख्तियार करके खुदा के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं।
फिर भी उस
तो
जुर्म की एक
ज़ाहिर है कि
मकदार
ये
होगी ना, कोई ना कोई,
इस जुर्म की क्या मकदार है? देखिए,
मैं नहीं जानता,
जुर्म की
लेकिन
मकदार तो आज तक वो लोग के जो सज़ाएं मुकर्रर करते हैं, दुनिया में सज़ाएं मुकर्रर करते हैं, वो भी नहीं बता सके। यानी क्या चोरी के जुर्म की मकदार यही है कि उसको 3 साल की सज़ा दी जाए? 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो
मैं तो
सकती है।
इंसान हूं ना, मैं तो नाकिसुल अकल हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हर चीज पर
नहीं, मैं
कादिर भी
वही
है।
वही अर्ज़ कर रहा
जी
हूँ। देखिए, जिस जुर्म की ये सज़ा बयान हुई है वो सरकशी और इस्तिकबार का जुर्म है, ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। यानी जानते बूझते आप खुदा के मुकाबले में खड़े हो गए, आप पर हकीकत वाज़े, आपने इनकार कर दिया है, आपने खुदा के मुकाबले में उसके शरीक ठहराए हैं, आपको मुतनब्बे किया गया, आपको तवज्जो दिलाई गई, आप फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए सज़ा तो उस कायनात के खालिक को जो वो चाहे दे, उसको पूरा हक है और उसने वो सज़ा बयान कर दी है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उसकी बारगाह में क़यामत में अर्ज़ किया जा सकता है कि आप इतनी सख्त सज़ा ना दें, तो उसने इसका इम्कान पैदा कर दिया है। कुरान मजीद की एक सूरह में बहुत खूबसूरती के साथ ये बयान किया है कि जो लोग भी इस दुनिया में नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे, खुदा ने उनसे जन्नत का वादा किया है। और फिर उसके बाद ये कहा है कि इल्ला माशा रब्बुक, यानी जन्नत भी खुदा की मशीयत पर खड़ी है। समझ रहे हैं ना ये
मैं
बात?
समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ
यानी
आपकी
अल्लाह
बात।
ताला ये फरमाते हैं कि
जी
मैंने जो लोग नेकी और तकवे का रास्ता इख्तियार किए हैं उनको जन्नत की बशारत दी है, इल्ला ये कि मैं कुछ और चाहूँ। अब ज़ाहिर है इसमें ये सवाल पैदा हुआ कि अच्छा परवरदिगार, आपने इतने वादे किए, आपने ये कहा जन्नत हमेशा रहेगी, आपने ये फरमाया जन्नत से किसी को निकाला नहीं जाएगा, तो अब जब आप फरमाते हैं तो इसमें तो ये इम्कान पैदा हो गया कि आप हो सकता है जन्नत को ख़त्म कर दें। तो फौरन ये कहा है कि अतान गैर मजजूज़, नहीं, इसमें मेरा वादा है, ये मेरी वो अता है जो कभी मुनक़ते नहीं होगी। आप इस आयत को पढ़ें ऊपर,
जन्नत के मामले में ही वादा है ना
जी
जावेद साहब?
इस आयत को ऊपर
जी
पढ़ें, आप नीचे आए।
अच्छा।
इसके बाद नीचे फौरन जहन्नम का जिक्र है और ये बताया गया है कि जहन्नम भी मा दामत इस समावात वल अर्ज़, जब तक ज़मीन व आसमान कायम है, वो ज़मीन व आसमान जो इस दुनिया के ख़त्म होने पर वजूद में आएंगे,
ठीक
जिनका
है,
जिक्र इस तरह हुआ है कि यौम तुबद्दलुल अर्ज़ गैर अल अर्ज़ व समावात, वो जब तक कायम रहेंगे ये जहन्नम भी कायम रहेगी, ये बयान किया। और
ठीक है,
उसमें भी ये कहा इल्ला माशा रब्बुक, इल्ला ये कि तेरा परवरदिगार कुछ और चाहे। अब ज़ाहिर है कि यहाँ भी वही सवाल पैदा होता है कि अच्छा फिर परवरदिगार आप ख़त्म भी कर सकते हैं, तो वहाँ क्या कहा था? वहाँ ये कहा था अतान गैरा मजजूज़, ये वो इनायत है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी मुनक़ते नहीं होगी। यहाँ
वो
ये नहीं कहा,
यहाँ ये नहीं
यहाँ
कहा।
ये कहा है कि इन रब्बा का फ़ालुल लिमा युरीद, तेरा परवरदिगार जो चाहेगा कर डालेगा। तो इस वजह से
इशारा
वो
मौजूद है।
परवरदिगार अगर चाहे, इशारा क्या है, यानी कह ही दिया जो कुछ कहना है,
ठीक
इन
है,
रब्बा का फ़ालुल लिमा युरीद, वो आयत ख़त्म हो रही है अतान गैरा मजजूज़ पर, ये आयत ख़त्म हो रही है इन रब्बा का फ़ालुल लिमा युरीद पर। यानी आपको कोई हक नहीं है कि आप खुदा के इस तरह के किसी काम के ऊपर एतराज़ करें, क्योंकि ये उसकी वईद है, उसने अपने दुश्मनों को धमकी सुनाई है, उनकी सज़ा बयान की है। वो करीम है, रहीम है, इस कायनात का खालिक है, जो चाहे कर डालने वाला है, उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, वो अपने वादे की खिलाफ वर्जी तो नहीं करेगा, इसलिए कि जन्नत उसका वादा है, लेकिन जहन्नम वो उसका ऐलान करने के अगले दिन ख़त्म करते हैं।
ठीक।
इसलिए
इनफैक्ट
इसको यही होना
इनफैक्ट
चाहिए। आप देखिए खुलासा क्या हुआ,
जी
वो ये है कि जुर्म की सज़ा तो बयान कर दी गई है और ये बिल्कुल ठीक है कि जुर्म इतना बड़ा है कि उसमें ये सज़ा भी अगर दे दी जाए तो ये कोई खिलाफ इंसाफ नहीं है, यानी इस कायनात के खालिक के मुकाबले में उसकी मखलूक खड़ी हो गई, तो इसलिए सज़ा देने का तो उसको इख्तियार है। وہ دے, لیکن اس نے اس امکان کو بیان کر دیا ہے کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں, چاہوں گا تو جہنمی کا خاتمہ کر دوں گا, یہ امکان بیان کر دیا ہے اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے. اب آپ نے جو سوالات بھی کرنے ہیں وہ قیامت کے دن اگر وہاں پہ سنوائی ہو گئی تو میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے, اس بارگاہ میں کرنے کا موقع ہو سکتا ہے مل جائے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا, اس کی یہ عظیم نعمت ہم کو حاصل ہو گئی, تو پھر کچھ بولنے کا موقع بھی مل جائے گا. تو یہ باتیں وہاں اس بارگاہ میں عرض کر دیں گے, اور امید یہی ہے کہ وہ کرم فرمائے گا, کوئی چیز انصاف کے خلاف نہیں کرے گا. سزا کو بیان کرنے کے موقع پر یہی تحدید ہونی چاہیے تھی جو قرآن مجید نے اختیار کی. اس میں اگر کمی کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جرم کی شناخت کو کم کر رہے ہیں.
ٹھیک,
یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے, یہ ایسا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں ڈال دے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے, وہاں ایک بار تمہاری کھال جل جائے, دوبارہ دے کر تمہیں اسی سزا کی نظر کر دے, تب بھی یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا کا معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ہے سزا کا بیان. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ جو میں چاہوں گا کروں گا, تم میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. لیکن اگر میں نے کوئی وعدہ کیا ہے, سزا کبھی وعدہ نہیں ہوتی.
سزا تو وعدہ نہیں ہوتی, وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے.
یعنی یہ ایک وعید ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھیے, آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کیا نا تو میں تمہیں تھپڑ بھی ماروں گا اور تمہیں گھر سے بھی نکال دوں گا, لیکن اس کے بعد آپ شفقت سے واپس لے لیتے ہیں اس بات کو, یہ وعدہ نہیں ہوتا.
ٹھیک,
لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں 10 روپے دوں گا,
یہ وعدہ ہے,
اس کو پورا کرنا چاہیے آپ کو. تو اس لیے وعدے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اتان غیر مجزوز, سزا کے بارے میں یہ نہیں کہا. یہ کہا ان ربا کا فعال لما یرید, تیرا پروردگار جو چاہے گا کرے گا. اور یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ جو چاہے گا کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی رحمت, اس کی شفقت سے بہت سی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. بس وہ امیدیں ہی وابستہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ سرکشی نہیں اختیار کر لینی چاہیے کسی حال میں کہ ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے. نہیں, یہ رحمت کس کو حاصل ہوگی؟ یہ انہی کو حاصل ہوگی جو اس کے ماننے والے ہیں. کہا ہے نا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یعنی اگر ہمارا رویہ اچھا ہے, ہم اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ہم اس کی رحمت کے منتظر رہتے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے بڑی سے بڑی غلطی معاف ہو جائے, ممکن ہے کہ بڑی سے بڑی کوتاہی سے بھی درگزر کر لیا جائے. لیکن سرکشوں کو اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے, انہیں اپنی سرکشی کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم باہر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت و شفقت کی توقع کر سکتے ہیں. تو سرکشوں کے لیے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کی سرکشی, ان کا استکبار کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ہونی چاہیے. یہ تنبیہ ان کے لیے ہے. میرے اور آپ کے لیے جو خدا کے مقابلے میں سرکشی کا تصور نہیں کر سکتے, گناہگار ہم بھی ہوئے, بعض اوقات کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں, ہمارے لیے تسلی کے طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ خیال نہ کرو کہ میں کوئی ظلم کروں گا یا زیادتی کروں گا, میں ادھر وعدہ کر رہا ہوں, اس وعدے کو کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا.
ٹھیک,
ان اللہ لا یخلف المیعاد.
بالکل.
اور یہاں کیا فرمایا, ان ربک فعال لما یرید. تو اب یہ درخواست یہاں بھی کی جا سکتی ہے, وہاں بھی کی جا سکتی ہے.